الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج رات سے ہمارے ہاں آخری عشرہ شروع ہو جائے گا. آپ دیکھ رہے ہوں گے رمضان کتنی تیزی سے گزر رہا ہے. یہ آخری عشرہ شروع ہوگا اور پتہ بھی نہیں چلنا اور ختم ہو جائے گا. اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وقت بہت تیزی سے گزرے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا وقت کا. سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتہ دن کی طرح، اور دن جیسے آپ نے کوئی موم بتی جلائی اور بجھا دی. اگر آپ پرانے لوگوں سے پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ ہاں، ان کو بھی اب یہ محسوس ہوتا ہے کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے. جب وہ بچپنے میں تھے یا جوان تھے تو وقت ایسے نہیں گزرا کرتے تھے. اب اس میں سوچنے کی بات کیا ہے؟ دیکھیں، سمجھنے کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ جس کی زندگی اتنی تیزی سے گزرے جا رہی ہو، اس کو تو بڑا سنبھل کے چلنا چاہیے. اس لیے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا اور زندگی گزر بھی چکی ہوگی. زندگی نے ہمیں گزار دیا ہوگا. ہم سوچتے ہیں نا، ہم زندگی گزار ہیں. نہیں، زندگی ہمیں گزار چکی ہوگی اور تب ہوش آئے گا کہ یہ تو ہاتھ سے نکل بھی گئی. اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کو قرآن پاک میں فرمایا، اقتربت الناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. اقترب الناس حسابهم مطلب کس لوگوں کے حساب کا بہت قریب آ گیا، اور ان کا حال یہ ہے کہ فی غفلۃ معرضون، وہ غفلت میں پڑے ہوئے، منہ پھیرے ہوئے. یعنی اس زندگی کا فریب یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ ایسے لگتا ہے اس کے لیے ابھی وقت رک گیا ہے. اس کو لگتا ہے ابھی میں وہی 20s 30s کی ایج میں ہی رہ گئی. اس کو لگتا ہے کہ میں تو اتنی بڑی نہیں ہوئی. کیونکہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو بڑھنے کا پتہ چلتا ہے، قد بڑھ رہا ہوتا ہے، جسم بڑھ رہا ہوتا ہے، انسان گرو کر رہا ہوتا ہے. لیکن ایک حد پہ آ کے پھر انسان رک جاتا ہے، جسمانی طور پہ وہ آگے گرو نہیں کرتا. تو اس کو ایسے لگتا ہے کہ میری ایج بھی رک گئی ہے، میرے لیے وقت بھی رک گیا. حالانکہ ایسا ہے نہیں. یہی ہے اس زندگی کا دھوکا. ہمارے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے جوان ہو جاتے ہیں، مگر خود ہم اپنے آپ کو ایسے محسوس کرتے ہیں جیسے ابھی وہیں کھڑے ہیں جہاں 10-20 سال پہلے تھے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی تیزی سے وقت گزر رہا ہے، ہمارے عمل کی رفتار بھی اتنی تیز ہو جانی چاہیے. کیونکہ ہم ریئلائز نہیں کر رہے کہ ہم آگے کو جا رہے ہیں، پیچھے کو نہیں جا رہے. تو زندگی کے دنوں کو تو قیمتی جاننا ہے، مگر رمضان کے دنوں کو تو بہت قیمتی جاننا ہے. سب کام اب پوسٹ پون کرتے ہیں، کوئی کام کہیں دوڑا نہیں جا رہا. دیکھیں، رمضان کسی کا انتظار نہیں کرے گا کہ آپ پہلے کام ختم کر لیں تو میں رک جاتا ہوں. نہیں، وہ تو نکل جائے گا ہاتھ سے. اور جو کام اس وقت ہو سکتا ہے وہ پھر کبھی نہیں ہو سکے گا. لیکن جنت میں پہنچ کے جنتی اگر 1 کروڑ دفعہ بھی سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، تو ان کا درجہ نہیں بڑھے گا، ان کے ثواب میں اضافہ نہیں ہوگا، ان کو کچھ اور خاص نہیں ملے گا. کیونکہ ان کے بارے میں آتا ہے وہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، وہ الحمدللہ کہیں گے. دنیا میں اگر کہو گے تو میزان بھر جائے گا، لیکن وہاں جا کے اگر کہو گے تو کچھ بھی نہیں بھرے گا. تو پھر کتنی بڑی یہ دولت ہمیں ملی ہوئی ہے یہاں، جس کا ہمیں احساس بھی نہیں کہ ہم یہاں پر اگر ایک دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں تو ہمیں وہ سب کچھ مل جاتا ہے جو جنت کی نعمتیں پا کے بھی نہیں مل سکتا. تو دنیا کی یہ جگہ بڑی قیمتی ہے، یہاں سے ہم وہ کمائی کر سکتے ہیں جو وہاں نہیں ہو سکتی. رول معانی میں ایک واقعہ آتا ہے سلیمان علیہ السلام کا، कि उनको, जैसे कि आपको पता है कि कितनी बड़ी सल्तनत मिली थी, तो जब तख्त पे बैठते थे हवाओं को हुक्म देते थे वो उड़ा के ले जाती थी। एक दफा इसी शान और शौकत से आपका तख्त जा रहा था तो किसी ने ताज्जुब से कहा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी दौलत, कितनी बड़ी शान और शौकत मिली हुई है आले दाऊद को। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को बुला के पूछा, तुमने क्या कहा है? पहले तो वो डरा, फिर तसल्ली देने पे बताया। तो फरमाते हैं, एक दफा सुभान अल्लाह पढ़ना इस सारी शान और शौकत से बेहतर है जो आले दाऊद को दी गई। अरे जितने भी माल दौलत बादशाहतें भी किसी को मिल जाए वो कम है, वो कुछ भी नहीं है इस नेमत के मुकाबले में कि कोई सुभान अल्लाह बोल दे, कोई अल्हम्दुलिल्लाह बोल दे, कोई अल्लाह अकबर बोल दे। वो जिनसे, वो कलिमात जिनसे जमीन और आसमान के दरमियान का खला पुर हो जाता है, इतने ये बड़े कलिमात हैं। वो कलिमात के जिनके कहने से सुभान अल्लाह मीजान भर जाता है, वो कलिमात के जिनके इतने वो वजनी हैं कि एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह रख दिया जाए और दूसरी तरफ पूरी दुनिया के हर चीज रख दी जाए, तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह ज्यादा वजनी है। जमीन और आसमान और सारी चीजें रख दी जाए ना, तब भी ला इलाहा इल्लल्लाह ज्यादा वजनी। तो ये हमें जो नेमतें मिली हुई हैं ये यहाँ की जिंदगी की हैं और यही खत्म हो जानी है। जो ही आंख बंद होगी ये सिलसिला खत्म हो जाए, तो इसलिए इंतजार नहीं करना। देखें, अगर हमने इस जिंदगी को सोच समझ के गुजारा, मेहनत करके गुजारा, तो तब तो फिर हम अल्लाह ताला से कोई उम्मीद रख सकते हैं कि वो हमें माफ कर दे और हमने अपनी तरफ से कोशिश कर ली। इम्तिहान में भी वही बच्चा कह सकता है ना, अल्लाह आप तेरी सपुर्द है तू पास कर देना, जिसने पहले खुद मेहनत की और जिसने कोई तैयारी ही नहीं की और बस कहे अल्लाह तू पास कर देना पास कर देना, तो ये कहाँ पास होगा। तो पहले खुद मेहनत करें, फिर अपना मैक्सिमम जान लगा के फिर कहें अल्लाह मैंने अपनी कोशिश कर ली, अब तुम मुझे पार लगा देना, अल्लाह तेरी सुपुर्द अब तू संभाल लेना। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना कि बस खुद तो कुछ नहीं करें, बस दुआओं के भरोसे भी। कल मैंने आपको एक सवाल दिया था कि आप उसको पर गौर करें, क्या सवाल था याद है आप लोगों को? मैंने कहा था आप इस पे गौर करिएगा कि क्या जाने वाले का यही तरीका होता है, जो तरीका जिंदगी हमारा है या यही जाने वाले का तरीका होता है? तो क्या जवाब मिला आपको? खुद को कहाँ खड़े पाया? क्या जाने वाले की तरह जिंदगी गुजार रही हूँ या हमेशा रहने वाले की तरह? देखिए, दिल की सफाई भी वही करेगा ना जिसको ये फिक्र होगी कि मैंने चले जाना है, मैं ऐसा दिल लेके कैसे अपने अल्लाह के सामने हाजिर हूँ जिसमें ख्वाहिशात नफ्स हैं, हसद है, बुग्ज है, कीने हैं। कितनी सारी चीजों पे हमने बात की ना, गुस्सा, तकब्बुर, गीबत, झूठ, ऐब जुई, जिस दिल के अंदर ये हो वो कैसे आगे समझ सकता है कि उसके दिल को कबूल कर लिया जाएगा? और ये ना सोचेंगे सब एक दिन में सही हो जाएगा, इसके लिए बहुत मेहनत करनी है। जिस्म की बीमारियों को भी आप देखें, जिस्म की बीमारियां भी बीमारी की नौईयत के मुताबिक है कि अगर बहुत पुरानी हो चुकी है तो ज्यादा टाइम लगता है ना उस बीमारी को दुरुस्त होने में। आप इलाज तो शुरू कर देते हैं मगर एक दिन में नहीं बीमारी दूर होती, लंबा इलाज उन बीमारियों के लिए होता है जो ज्यादा सख्त होती हैं और ज्यादा पुरानी हो जाती हैं, मगर इलाज करते रहना जरूरी है। हम मेहनत की कड़वाहट सहें और सब्र से इलाज में लगे रहें तो ये बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। ये जिस्मानी बीमारियां ना, इनके लिए हम इतनी फिक्र करते हैं, दिल की बीमारियों की हमें फिक्र नहीं है। हालांकि जिस्मानी बीमारियां तो मौत के साथ खत्म हो जाएंगी, मर गया इंसान बीमारियां भी खत्म, मगर दिल की बीमारियां वो तो ऐसी हैं कि जो मौत के साथ खत्म नहीं होनी ना। अल्लाह ताला ने फरमाया ना, वहुस्सिला मा फिस्सुदूर, जो सीनों के अंदर है ना वो उस दिन निकाल के बाहर लाया जाएगा। तो ये मौत के साथ तो नहीं खत्म होनी, ये तो सीनों में पड़ी रहेंगी और उस दिन निकाल के लाई जाएंगी। फरमाया तत्तलियु अलल अफईदा, वो आग जो होगी वो दिलों को पकड़ रही होगी। दिलों को ही क्यों कहा, तो यार सारे जिस्म को पकड़ रही होगी, मगर दिल ये नापाक होता है तो जिंदगी नापाक हो जाती है। तो जिस्म की बीमारियों पर इंसान सब्र करे तो फायदा है, गुनाहों की बख्शिश हो जाती है, लेकिन दिल की बीमारियों उनसे तो सिवाय अजाब के कुछ हासिल नहीं होता, कोई बख्शिश नहीं होती। लिहाजा इनको लेकर नहीं यहां से जाना। मसला ये है ना कि हमें पता ही नहीं कि हमने कब जाना है, तो इसलिए हम सोचते हैं कि अच्छा कर लेंगे कर लेंगे, मरने से पहले तौबा कर लेंगे। बाज लोगों को मौका मिल जाता है, वो अपने आखिरी वक्त में कहते हैं हमने सबको माफ कर दिया। उस वक्त दिल कितना बड़ा कर लेते हैं, मगर सोचने की बात यह है कि वो बंदा उस वक्त माफ कर रहा है जब जा रहा है। जिंदगी में माफ कर देता तो जिंदगी में ताल्लुकात अच्छे हो जाते, जिंदगी पुरसकून हो जाती, खुद भी सुकून से रहता। दूसरी बात ये, अब ये तो माफ कर रहा है, मगर जिनके साथ इसने खुद ज्यादती की होती है उनसे माफी कौन मांगे। अब तो ये जा रहा है। जैसे किसी ने अपना वाक्या बताया कि उसने किसी के साथ बुरा किया हुआ था, नहीं सॉरी, किसी ने उसके साथ बुरा किया हुआ था, तो पता चला उनकी वफात की खबर आ गई कि वो फौत हो गई है, तो इस बंदी ने कहा मैं उनको माफ कर देती हूँ, बस मैंने माफ कर दिया, वो दुनिया से ही चली गई, क्या मैंने दिल में रखना। जैसे इंसान बाज दफा सोचता है ऐसे, फिर कहने लगी मैंने सोचा कि मैंने तो माफ कर दिया, मगर जिनके साथ मैंने ज्यादती की भी है और वो दुनिया से चले गए हैं उनसे मैं कैसे माफी मांगू। अब उनके साथ तो मुलाकात कयामत में ही होनी है, और उस दिन तो कोई किसी को माफ नहीं करेगा, सब दूसरों की नेकियां ले जाएंगे। तो जो भी हमने ऐसे खाते खोले हुए हैं उनका क्लोजर यहीं करना है, इससे पहले कि वो दुनिया से चले जाए या हम चले जाएं। अगर हम खुद चले जाएंगे तब भी नहीं माफी मांग सकते, अगर वो चले गए तो फिर अब उनसे कौन माफी मांगे जिनके साथ हमने कुछ बुरा कर लिया। तो इसमें हमें सबको अपना मुहासबा करना है। अगर तो हम ये कहते हैं कि हमने कभी किसी के साथ कोई बुरा नहीं किया, सब लोग मेरे साथ ही बुरा करते हैं, तो फिर तो कोई किसी से माफी मांगने की जरूरत ही इंसान महसूस नहीं करता। इसलिए देखें, चेक करें हमारे से क्या क्या ज्यादती हैं। ये भी तकब्बुर होता है कि हमने तो नहीं कभी किसी को कुछ कहा, हाँ लोग ही हमें कहते हैं। तो दिल की बीमारियां दूर करने के लिए ना पक्के इरादे की जरूरत है, मैंने इन चीजों से निजात हासिल करनी है। इसके लिए दिल को मुसलसल चेक करते रहना है, जो ही कोई खराबी पैदा होती है उसी वक्त इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। इसके लिए हम अपने लिए कोई सजा भी रख सकते हैं कि अब अगर मैंने मिसाल के तौर पे झूठ बोला या कोई मैंने गइबत की है, तो अब अपने नफ्स से कहें कि अब इतने नफल पढ़ने जरूरी है, तेरी सजा है ये, या इतने रोजे रखने जरूरी है। ये कोई भी ऐसा काम जो मुश्किल लगता है, लेकिन उस काम को करके आप अपने नफ्स को कंट्रोल करें, अगली दफा याद रहेगा फिर कि ये नहीं करना, क्योंकि फिर वरना इतने रोजे रखने पड़ेंगे मुझे, तो ये नफ्स पे बड़ा भारी गुजरता है। इसलिए फिर शैतान भी कहता है इसको ये बात ना ही याद दिलाओ, क्योंकि फिर ये तो नेकी कर लेगा।
इसी तरह जिस्म की बीमारियों के आप देखते हैं, हम कितने चर्चे करते हैं, हाय मुझे ये बीमारी हो गई, मुझे ये हो गया, वो हो गया, लेकिन ये दिल की बीमारियों को छुपा के रखते हैं। कभी कोई किसी को नहीं कहेगा मेरे अंदर तकब्बुर भरा पड़ा है, मेरे अंदर कीने भरे पड़े हैं। तो आज तो नहीं जाहिर करना चाहते, लेकिन हम सोचें कि जिस दिन सीनों के अंदर की चीज़ें बाहर लाई जाएंगी, उस दिन हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, जब सारी दुनिया देखेगी कि ये जो इतनी शरीफ बनती थी, इतनी मीठी बनती थी, इसके दिल में ये सब गंद भरा हुआ था, ये बातें ये सोचती थी। तो यही साफ कर लेना। अभी अल्लाह ने हमारा पर्दा रखा हुआ है, इससे पहले कि ये पर्दा फाश हो जाए, हम अपनी इसलाह कर लें। और अगर हमने पक्की नीयत कर ली है कि हमने अपने दिल को साफ करना है, तो एक नेकी का अजर तो हमें अभी मिल गया इरादा करने पे, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस इरादे पे अमल भी करके दिखाना। ये जो रातें आ रही हैं इंशाअल्लाह ताला आज से शुरू हो रही हैं, इनका एक बड़ा ही खूबसूरत अमल है और वो इतकाफ है। इतकाफ यूं तो मस्जिद में होता है, और इसकी दलील क्या है, सूरह बकरा आयत नंबर 187 में, वला तुबाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद। तो मसाजिद में ही इतकाफ होता है। ये मसला यहाँ से उलमा निकालते हैं, चाहे मर्द हो या औरत। और उम्महातुल मोमिनीन हमारी माएँ जो हैं, वो इतकाफ मस्जिद में ही किया करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इजाज़त चाही, तो आपने ये नहीं फरमाया कि अपने घरों में इतकाफ कर लो, जैसे नमाज घर में बेहतर है औरत की, फरमाया कि उनके लिए खैमे लगवाए और वहाँ इतकाफ करती थी, हालांकि उनके घर तो मस्जिद के साथ थे। तो अगर मस्जिद में औरतों के लिए बाकायदा इंतज़ाम है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर ना बैठें, क्योंकि एक नफली इबादत ही है। और आजकल तो मोस्टली नहीं है ये इंतज़ाम, क्योंकि मसाजिद में ही कोविड की वजह से बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो वल्लाहु आलम, अगर ऐसी सूरत में, क्योंकि ये इज़्तिरारी सूरत है, वल्लाहु आलम, हो सकता है कि कोई गुंजाइश निकल सकती हो कि कोई घर पे बैठ जाए। लेकिन ये इतनी प्यारी इबादत है ना, क्योंकि आप अल्लाह के घर में बैठ जाते हैं कि अल्लाह अब मैं तेरे दर पे आ गई, अब मैंने तेरे दरवाजे को नहीं छोड़ना जब तक तू मेरी झोली ना भर। देखिए, इंसानों के भी अगर दरवाजे पे कोई आके बैठ जाए ना, जाए ही नहीं, बैठा हुआ बैठा हुआ, तो आप उसको कुछ दे के ही भेजते हैं, तो अल्लाह तआला की शान तो बहुत बुलंद है, वो क्या अता नहीं करेगा। लिहाजा जिसने मसनून इतकाफ करना है 10 दिन का, तो वो आज मगरिब के बाद से अपनी इतकाफ की जगह में दाखिल हो जाए। अगर घर में कर रहे हैं तो घर में जाहिर है वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी जो कि वैसे असल मसनून इतकाफ की होती हैं। जाहिर है फिर अगर आपने अपना खाना पीना आपके जिम्मे है, तो आपने उठना भी है, बनाना भी है, फिर वो वाली चीज़ें नहीं है इतकाफ वाली ना, ये इसको वो इतकाफ नहीं कह सकते। हाँ, बस ये है कि आप एक अल्लाह ताला से लौ लगाते हैं, ध्यान उस तरफ करते हैं। तो वैसे तो इतकाफ आप 3 दिन का भी कर सकते हैं, 1 दिन रात का भी कर सकते हैं, मगर 10 दिन का करें तो बेहतर है, क्योंकि अब रमज़ान तो जा रहा है, तो बेहतर नहीं है कि हम इधर उधर के कामों से खुद को फारिग कर लें। हर एक के लिए मुमकिन नहीं है इतकाफ करना ना, मगर ये तो मुमकिन है ना कि जितना भी हमें वक्त मिले, हम उसमें अलग होके बैठ जाएं, दूसरे कामों को छोड़ दें, इधर टाइम लगाएं कि हम अब अल्लाह ताला की तरफ ध्यान करते हैं, उसमें अपने जिक्र अस्कार करें, दुआएं करें, कुरान पाक की तिलावत कीजिए। बाज़ लोग ये सोचते हैं कि अगर हमारा कुरान एक दफ़ा ख़त्म हो गया तो अब बस फारिग हो गए। नहीं, फारिग नहीं, दोबारा शुरू कर लीजिए, ठीक है। और अगर आप काफ़ी पीछे रह गए हैं तो भी कोई मसला नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं अब ख़त्म ही कर, नहीं हो रहा ख़त्म तो आप छोड़ो, अब रहने दो, नहीं। कोशिश पूरी करें कि जितना ज़्यादा आप पढ़ सकें, ठीक है। और इंशाअल्लाह ताला हमारा ये ख़ास प्रोग्राम भी जो आखिरी 10 रातों का होता है, वो आज रात से शुरू होगा। आज रात यानी 1 बजे ईस्टर्न टाइम के मुताबिक 1 बजे फिर हमारी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला। और इवन नाइट्स में 2:45 पे 2:45 बजे इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात हुआ करेगी, लेकिन ताक रातों में 1 बजे आपने रेडी होके बैठना है। और इसके लिए आज के दिन जरूर आप लोग सोएं थोड़ी देर दिन में, ताकि आप रात को नींद से झोंके ना ले रहे हैं। क्या बहुत दफ़ा ऐसे होता है हमें पता ही नहीं चल रहा होता हम पढ़ क्या रहे हैं, तो कुछ कॉफ़ी वगैरह पी लें, कुछ कर लें, लेकिन ताक रात है। तो इसके लिए आप कोशिश करें असर के बाद आप गुसल कर लें, तैयारी कर लें, क्योंकि मगरिब के बाद से रात शुरू हो जाती है। तो वो रात 1 बजे नहीं शुरू होगी, मगरिब के बाद से ही शुरू हो जाएगी। कलाम कम कर दीजिए, जिक्र बढ़ा दीजिए, ठीक है, बातें कम करनी है, अल्लाह ताला का जिक्र ज़्यादा करना है। तो इसकी तैयारी करनी है आपने। वैसे तो सारी 10 रातें कीमती हैं, लेकिन ताक रातों में खसूसी खसूसी तौर पे तैयारी कीजिए। साफ़ सुथरा लिबास पहनिए, अपनी जगह आप देख लें कि कहाँ पे आपने इबादत करनी है, वहीं पे अपनी बुक्स रख लें सारी, अपना कुरान पाक रख लें, दुआओं की ये सब चीज़ें वहाँ पे मौजूद होनी चाहिए। आप पूरा इंतज़ाम करके आज फिर मगरिब के बाद आप जो भी अपने काम निपटा के फिर बस बैठ जाइए, ठीक है। तो अगर दिन में इतना आप थक गए तो फिर रात को तो थकावट की वजह से और नींद आएगी। आज ज़्यादा मुशक्क़त के काम ना करें, लाइट रखें दिन को, ठीक है। आज का जो जिक्र है ये वो जिक्र है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पे औरतों को ताकीद फरमाई करने की फरमाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को कि अल्लाहु अकबर और सुबहान अल मलिक अल कुद्दूस और ला इलाहा इल्लल्लाह ये जिक्र ज़्यादा किया करो, और फरमाया कि उंगलियों की पोरों पे इसको गिना करो, क्योंकि क़यामत के दिन इन पोरों से सवाल होगा और इन्हें बोलने के लिए कहा जाएगा, तो ये बोल के बताएंगी कि हमारे पर इतनी इतनी दफ़ा इसने ये पढ़ा, सुभान अल्लाह, ये बोलेंगी बताएंगी इसने इतनी, इस औरत ने अल्लाह अकबर इतनी दफ़ा कहा मेरे ऊपर, इतनी दफ़ा गिना, इतनी दफ़ा सुभान अल्लाह कहा। तो सुभान अल्लाह ये इन पोरों की तरफ देखिए, ये बोलने लगेंगी, तो इनके साथ अपनी गवाही को तैयार कीजिए, यानी ये आपके हक में बोले, ज्यादा से ज्यादा इनके ऊपर जिक्र कीजिए। तो फिर जिक्र क्या है, अल्लाह अकबर आपको पहले ही आता है, ला इलाहा इल्लल्लाह भी आता है, सुभान अल मलिक अल कुद्दूस, ठीक है। और आज की जो दुआ है ये दुआ भी बड़ी खूबसूरत दुआ है और मेरी पसंदीदा दुआ भी है। ये वो दुआ है जिसके अंदर यानी इंसान वो कुछ मांग लेता है, वो प्यारी चीज़ मांगता है जो कि हम काबिल तो नहीं हैं, लेकिन अल्लाह बस अल्लाह ताला ने मांगने से तो नहीं मना किया ना। तो क्या मांग रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हब्बक, अल्लाह मैं तुझसे तेरी मोहब्बत मांगती, तेरी मोहब्बत मांगती, वह हुब्बा मैं युहिब्बुका, और मैं उस शख्स की मोहब्बत तुझसे मांगती हूँ जो तुझसे मोहब्बत करता हूँ, यानी मुझे उससे भी मोहब्बत दे दे जो तुझसे मोहब्बत करता हूँ। ठीक ना, अगर ऐसे लोगों से मोहब्बत होगी तो इंसान उनके साथ बैठेगा, उठेगा, उनके जैसे काम करने की कोशिश करेगा। والعمل الذي يبلغني حبك, और अल्लाह मैं चाहती हूँ कि तू मुझे ऐसे अमल की तौफीक दे दे जो मुझे तेरी मोहब्बत तक पहुँचा, यानी वो मुझसे सारे वो काम करा दे जिससे मुझे तेरी मोहब्बत मिल जाए। तो मोहब्बत में डूबी हुई दुआएं बहुत ही खूबसूरत, ना मेरे दिल में भी अपनी मोहब्बत डाल दे, मुझसे वो काम भी ले ले जिससे तेरी मोहब्बत मिलती हो, वो उस बंदे की मोहब्बत भी मुझे दे दे जो तुझसे मोहब्बत करता हो। कौन नहीं ये चाहेगा। हमने कल अल्लाह ताला की नाराजगी से बचने की दुआ पढ़ी थी और आज हम ये दुआ सीख रहे हैं जिसमें अल्लाह की मोहब्बत उसका सवाल है कि तेरी मोहब्बत मुझे हासिल हो जाए। कहाँ मैं और कहाँ अल्लाह, तो बहुत बड़ी चीज है जिसको ये मोहब्बत हासिल हो। तो इंशाल्लाह इस दुआ को भी हम सीखेंगे और करेंगे। अल्लाह ताला हम सबसे कबूल फरमाए। शुक्र को ना भूलिएगा, शुक्र गुजारी करते रहना है। हमने कल भी बात की थी शुक्र गुजारी पे, जानते हैं शुक्र गुजारी करने पे क्या मिलता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो खा के शुक्र करता है ना, वो रोजा रख के सबर करने के वाले के बराबर है। यानी शुक्र इतनी बड़ी नेमत है, शुक्र भी जिसको मिल जाए। तो खाने के बाद की आपको दुआ बताई थी, उसको याद रखिएगा, शुक्र गुजारी वाली जिंदगी गुजारी। शुक्र गुजारी से वो दर्जे हासिल हो जाते हैं कि देखें जो रोजा रख के सबर कर रहा है उसके बराबर उसको अजर मिलता है जो शुक्र अदा करता है। अल्लाह ताला हमें शुक्र गुजार बना दे, हमारे दिलों को शुक्र से भर दे, हमारी जुबानों को जिक्र से भर दे, और इन रातों में हमसे बेहतरीन इबादत करवा दे। अल्लाह ताला लैलतुल कदर की हमें इबादत नसीब फरमा दे। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।